पृष्ठ संख्या 131। अपने निजत्व की समीपतम पहचान का यह प्रतीकार्थ धीरे धीरे इसी तरह पूरी कविता में संगुपित होता हुआ आगे बढ़ता है। स्खिन्नता, उदासी और क्षणिक नैराश्य के बाद फिर उसे अपनी रचनात्मक कोमल ऊर्जा का प्रथम साक्षात्कार याद आता है। कला साधना के वह शुरू के दिन, जानकी का सारा प्रसंग इसी कलात्मक संरचना के प्रारंभिक दिनों का प्रतीकार्थ देता है। इसमें कविता कवि से गोपन संभाषण करती है, प्राकृतिक वैभव, विलास और सौंदर्य से भरपूर। उसके प्रथम अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने एक संपूर्ण वाक्य बिंब की रचना की है। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सवीय, जैसे प्रकाश का स्वर्गीय झरना हो। पृष्ठ संख्या 132। कुछ इस तरह के आंतरिक सौंदर्य का अनुभव कवि अपनी उस प्रथम रचना ऊर्जा के ऊर्जास्वित सौंदर्य की स्मृति से जैसे फिर जगाता है। अपनी प्रतिभा और रचना शक्ति पर ही तो प्रश्नवाचक लग गया था, जो रह रहकर उसके दृढ़ मन को झकझोर रहा था। उस संशय से वह मुक्त होता है और नए सिरे से उसे अपनी रचनात्मक क्षमता की अद्वितीयता का एहसास होता है। उसे अपने व्यर्थ पड़ गए दिव्य शर याद आते हैं और वह अपनी काव्य वर्चस्विता का सर्वांत प्रसार देखने के लिए सन्नद्ध हो उठता है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन कापते हुए किसलय झरते पराग समुदय गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय ज्योति ही प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सवीय जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त हर धनुर्भाग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर वह आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। नैराश्य के घने अंधकार के बीच उसे अपनी काव्य रचना और प्रतिभा का प्रथम सौंदर्यपूर्ण कोमल अनुभव एक बिजली की कौन की तरह याद आता है। फिर वह उसी तरह अनिमेष एकटक रचना ऊर्जा के प्रथम सौंदर्य की स्मृति को देखने लगता है। उसकी वह रचना ऊर्जा जो धरती से उपजी है, जो धरती की अनंत उर्वरता की साक्षी है, जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, अपनी रचना में नए सिरे से पैदा हुआ यह आत्मविश्वास उसे फिर से नई रचनात्मकता के लिए तैयार करता है। उस कलात्मक ऊर्जा का फिर से संधान करने के लिए उस चीता को, उस धरती की रचना को फिर से पाने के लिए प्रतिभा की शक्तिमंतता को निखारना होगा, शक्ति की साधना करनी होगी। हनुमान का प्रसंग कवि के उसी शक्ति स्रोत का प्रतीक है, उसी आज्ञाकारी रचनात्मक शक्तिमंतता का जो अद्वितीय कलात्मक पृष्ठ संख्या 133। उपलब्धियों के लिए संपूर्ण जीवन, सारी प्रकृति, धरती, समुद्र, आकाश, अनुभव के सारे आयाम, सारे छोर छान रहा है। शत घृणावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। इस तरह अनुभव और जीवन के सभी आयामों को छानते हुए कवि अपनी रचनात्मकता की पुनर्पहचान करता है। उसे लगता है जब मिडिया कर कवि, लेखक, अलेखक भी उस शब्द शक्ति की छदम साधना से विजयी होने का आभास दे सकते हैं तुम्हारी प्रतिभा को, ब्रैकेट में कुछ समय के लिए ही सही, ब्रैकेट बंद, आच्छन्न कर सकते हैं, तो तुम्हारे जैसे महान प्रतिभाशाली शास्त्रविद, नैतिक, कभी छीड़ का अन्न ना छिनने वाला क्यों नहीं कर सकता। अतः शक्ति की मौलिक कल्पना करो, प्रतिभा और रचनात्मकता के उस अद्वितीय बिंदु पर खड़े दिखाई दो जहाँ कोई न हो। उस कठिन साधना के लिए तुम्हें अपना सब कुछ समर्पित करना होगा, सारे विचार, संपूर्ण दृष्टि, अपना शरीर, रक्त, मन, मस्तिष्क, संपूर्ण अंतर्वाह व्यक्तित्व। द्विधाग्रस्त मन से रचना की यह साधना संभव नहीं है। एकांत मन से, पूजा भाव से, संपूर्ण आत्मदान के साथ, तब तुम देखोगे कि विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि नित नूतन मौलिक सत्यदृष्टा साधक पुरुषोत्तम नवीन तुम ही हो। एक रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो, सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। दो कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरश्चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। इस तरह अपने रचनात्मक जीवन के संघर्षों का साक्षात्कार और अपनी प्रतिभा के पुनर्दर्शन का अर्थ ही राम की शक्ति पूजा के अंदर प्रतिष्ठित वह अद्भुत मौलिक और नवीन अर्थ है जिससे यह कविता जगमगाती है और इसकी गरिमा कई गुनी बढ़ गई है। इससे इसका इतिवृत्त कहीं भी गलत जगह खंडित नहीं होता, ना ही इसका पहला नया अर्थ कहीं बाधित होता है, बल्कि इन अर्थों का एक सुघड़ समाहार पूरी कविता में देखने को मिलता है। आत्म साक्षात्कार का यह अर्थ राम के चरित्र पृष्ठ संख्या 134 के भीतर इतनी सूक्ष्मता से कवि ने पिरोया है कि साधारणतः उसकी जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन अर्थ संधान की खोज में डूबने पर पंक्ति पंक्ति, शब्द शब्द इस अर्थ को ले दौड़ता है। यह अवश्य है कि विरोध पक्ष का स्पष्ट अंकन निराला ने कहीं नहीं किया। रावण के प्रतीक में वह सभी समाहित हो जाते हैं जो उनकी रचनात्मकता का विरोध करने और उसे धुंधलाने के लिए कटिबद्ध हैं। स्थूल रूप से इनकी जानकारी व्यर्थ है। किसी भी मौलिक विद्रोही कवि को किस तरह के विरोधों का सामना आजीवन करना पड़ता है और फिर भी अपनी रचनात्मकता में उसका विश्वास नहीं टूटता, और किस तरह वह अपनी अपराजेय प्रतिभा का लोहा मनवा लेता है, यही इस कविता का विषय है। इसे निराला के स्थूल जीवन से हटाकर एक जीवंत सत्य के रूप में भी समझा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार की इसी अद्वितीयता के समक्ष संशय की एक रात एक नगण्य कविता लगने लगती है। इसीलिए मैंने कहा है कि आत्मसंभवा अभिव्यक्ति की खोज और उपलब्धि ही राम की शक्ति पूजा का लक्ष्य है। वह अपने इतिवृत्त के लिए नहीं, बल्कि इसी अर्थ संभार के लिए महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। इन्हीं अर्थों में निराला की रचनात्मक संवेदना मुक्तिबोध के निकट पड़ती है। राम की शक्ति पूजा इसीलिए ऊपरी और सहज दिख पड़ने वाले विषयगत साम्य के बावजूद संशय की एक रात के उतने निकट नहीं है जितनी ऊपर से कोई साम्य ना दिख पड़ने वाली मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के निकट है, बल्कि दोनों का उद्देश्य लगभग एक है, उसी परम अनिवार्य आत्मसंभवा अभिव्यक्ति, उसी परम अनिवार्य आत्मसंभवा आत्म अभिव्यक्ति की खोज और उपलब्धि। अंतर सिर्फ यही है कि जहाँ निराला ने एक पौराणिक कथा के माध्यम से अपने इस अर्थ को उसमें पिरोकर उसे खोजने, रचने और पाने की चेष्टा की है, वहीं मुक्तिबोध ने उसे अपनी कल्पनात्मक ऊर्जा और आत्म फंतासी को एक आख्यान का रूप देकर पाने का संकेत किया है। प्रकांतर से उसी को मुक्तिबोध कुहरे में सामने, रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात कहकर परिभाषित करते हैं। राम की शक्ति पूजा के राम या तुलसीदास कविता का अशेष छबीवर कवि यही रक्तालोक स्नात साक्षात रहस्य पुरुष नहीं लगते क्या? यह वही है उनका संशय। उनके मन मस्तिष्क और संपूर्ण व्यक्तित्व पर उतरा हुआ अंधेरा भी वही है, वही दुर्गम पर्वत सा व्यक्तित्व भी है, चिंताओं से जड़, कठोर, श्यामल और रहस्यमय, वही जहां तहां अचानक प्रकट होकर बिजली के झटके देता है। यह वही छवि विद्युत अच्युत है जो कवि की अंतर रचनात्मकता को उसी के सामने प्रकट करने के लिए बार बार बुलाता है। वही ध्वनियों के बुलबुले, सरों की सलवटें हृदय में धसाता हुआ मीठी दुस्साह शब्दों की लहरों से उसे भर रहा है। यह वही कंपन तुरीय ज्योति प्रपात छवि है, वही छवि जो राम की शक्ति पूजा में सीता के रूप में नए सिरे से झलक मार रही है, वही यहाँ सलिल के तग श्याम शीशे में श्वेत पृष्ठ संख्या 135 आकृति की तरह फैली है। यह वही तिलस्म खोह है अंधेरे से पूरी हुई, जिसमें राम बैठे हैं अंधकार से पूरे हुए। यह वही अपनी रचनात्मक ऊर्जा की अनुगूंज है जो सुनाई पड़ती है, दिखाई नहीं देती। यह वही रक्तालोक रसनाथ पुरुष है जो अचानक दिखकर फिर तिरोहित हो जाता है। अंतर सिर्फ यही है कि निराला राम की शक्ति पूजा में उसे पा लेते हैं, जबकि मुक्तिबोध उसे अंधेरे में पाने के लिए कमर कसते हुए दिखाई देते हैं। एक कोहरे में सामने रक्त आलोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात भव्य अजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह, आत्मा की प्रतिमा। दो गहर रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य, कोई एक सुनाई जो देता पर दिखाई नहीं देता, सलिल के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है, कोई मेरी बात मुझी से बताने के लिए ही बुलाता है बुलाता है। तीन अवसर अनवसर प्रकट जो होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का ना तनिक भी ख्याल कर, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत इशारे से बताता है समझाता रहता, हृदय को देता है बिजली के झटके। चार अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की, पृष्ठ संख्या 136 मेरे ही ऊर पर धुनती हुई सिर छटपटा रही हैं शब्दों की लहरें मीठी दुसह। पांच टूट फूट सब अस्त व्यस्त, टीले के वक्ष में सब कुछ ध्वस्त, किंतु यह स्पष्ट प्रचंड है तथ्य, अखंड है ढांचा पाषाणी कारा दृढ़ जबरदस्त। ये उदाहरण मैंने जगह जगह से उठाए हैं। यह भव्य अजानुभुज जिसे देखते ही वह साक्षात गहन संदेह की मूर्ति लगता है, यह वही स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर भी संशय वाला प्रसंग है। उसी के प्रतिरूप में निराला और मुक्तिबोध अपनी अब तक न पाई गई रचनात्मक अभिव्यक्ति खोजते हैं। वह रहस्यमय अंधकार की ध्वनि सा सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। दुर्गम पर्वत पर उतरे हुए नशा अंधकार में जैसे ताराएं कहीं दूर चमक रही हों, उसका आभास तो है लेकिन हल्का सा रहस्यमय अंतर्मुख। इस दुर्गम पर्वत के बिंब और अखंड है ढांचा पाषाणी कारा के बिंब विधान में वही साम्य झलकता है। राम के मन का अंधकार और मुक्तिबोध के अंधेरे में यों मुझे पकड़कर मौत की सजा दी, या भयानक खड्ड के अंधेरे में आहत छत बिछत पीड़ाएं समेटे किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में, के अंधेरे में कितना साम्य है वह आसानी से लक्षित किया जा सकता है। यहीं से इसी शून्य से इसी संभ्रम में से पुनः उस रक्तालोक स्नात परम अनिवार आत्मसंभवा अभिव्यक्ति की खोज दोनों कवि शुरू करते हैं। एक उसे इसकी उपलब्धि को इन शब्दों में अभिव्यक्ति देता है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, और दूसरा उसकी उपलब्धि के अपने सतत प्रयास के संकेत में कविता की समाप्ति करता है। पृष्ठ संख्या 137 उठता हूँ जाता हूँ गैलरी में खड़ा हूँ, एकाएक वह व्यक्ति आँखों के सामने से गलियों में सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। धड़कता है दिल कि पुकारने को खुलता है मुंह कि अकस्मात वह दिखा वह फिर खो गया किसी जनयूथ में, उठी हुई बाँह यह उठी हुई रह गई। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। मुक्तिबोध इसी स्तर आकर निराला के बहुत निकट लगने लगते हैं, यद्यपि वह अपनी इस अभिव्यक्ति की खोज में दूसरे तरह के बिंबों का इस्तेमाल करते हैं। स्वप्न, फंतासी और सामाजिक मिथकों के बीच से वह बार बार गुजरते हैं। इनके बीच में जो अंतराल है, जो अंधेरे दायरे हैं, वहाँ मुक्तिबोध बिंबों से अलग हटकर तथ्यात्मक आत्म अभिव्यक्ति पर उतर आते हैं। इस तरह के निजी जीवन के सीधे सादे प्रसंग उन्हें बिंबों की एक रोशनी में दूसरी रोशनी तक पहुँचाने में सेतु का काम करते हैं। यानी कि मुक्तिबोध स्वप्न, फंतासी और सामाजिक मिथकों के बीच के अंधेरे अंतराल में गायब होकर स्वयं रहस्यमय नहीं बन जाते, बल्कि निजी साधारण प्रसंगों से और अधिक मार्मिक और अर्थगर्भित हो जाते हैं। सारी बिंबमाला ऐंठती हुई रोशनी के जाले चारों ओर फैलाती हुई एकाएक टूट नहीं जाती, बल्कि एक झीने तार से जुड़ जाती है, जैसे एक लंबी मार्मिक गहरी बिंब योजना के बाद ये पंक्तियाँ। एक निजत्व तो माफ है बेचैन, क्या करूँ, किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ, दिल्ली या उज्जैन। दो, यह सिविल लाइन्स है, मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, पीटे गए बालक सा चेहरा उदास इकहरा। पृष्ठ संख्या 138। यह मुक्तिबोध का अपना शिल्प है, बिंबों की रोशनी दर रोशनी में चक्कर काटते हुए अंततः वह आत्मसंभवा अभिव्यक्ति तक पहुँचते हैं। निराला ने राम की शक्ति पूजा में मिथकों का या बिंबों की रोशनी दर रोशनी का उपयोग नहीं किया है, निराला कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि तब तक काव्य शिल्प इतना विकसित नहीं हुआ था। इसीलिए निराला सिर्फ शब्द बिंबों के लयात्मक उपयोग द्वारा यह काम निकालते हैं। मुक्तिबोध की बिंब योजना इससे पृथक प्रकार की है, वह शब्द बिंबों का लयात्मक उपयोग तो करते ही हैं, इसके अलावा वह पूरे वर्णन को एक समग्र बिंब बना देते हैं। इन दोनों तरीकों का अद्भुत समाहार मुक्तिबोध में मिलता है। उनके यहाँ एक पूरा का पूरा स्टेंजा एक बिंब होता है, उसे आप बीच में तोड़ नहीं सकते, वह अंत में जाकर फिर संपूर्णतः शुरू की ओर लौटता है और शुरू की ओर जाकर फिर अंत की ओर घूम जाता है। निराला में इस तरह के घुमावदार लंबे स्ट्रेंजा वाले बिंबों का अभाव है। दरअसल यह सर्वथा एक नई प्रणाली है जो आधुनिक कवियों ने विकसित की है। इसमें कवि विवरण को ही एक संपूर्ण बिंब रचना में परिवर्तित कर देता है। इसके ठीक विपरीत विवरण की भाषा से निजात पाने या उस पर काबू पाने के लिए छायावादी कवि शब्द के भीतर ही लयात्मक दृश्य या श्रव्य बिंबों की सृष्टि करता था। शब्द के लयात्मक बिंबों का ही उपयोग निराला ने राम की शक्ति पूजा में करके उसकी विवरण की सपाटता को झीना किया है। जबकि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में ऊपरी तौर पर घटनाओं और विवरणों से भरी पड़ी है, लेकिन कहीं इसका एहसास नहीं होता कि हम विवरण की सपाटता में फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ हर घटना और हर लंबा विवरण एक पूरा बिंब है। उसके अंदर शब्दों के छोटे छोटे लयात्मक बिंब भी भरे हुए हैं। ये एक तरह से पूरक बिंबों का काम करते हैं। इनकी वजह से सारा लंबा बिंब अंदर से टिमटिमाता हुआ अंत में अर्थ सौंदर्य के विस्फोटक प्रकाश से चमक उठता है। यह एक प्रकार से तह दर तह बिंब योजना की पद्धति है। प्याज के छिलकों के समान जितनी परतें उतारते चले जाइए, अंदर और कोमल सौंदर्य एक के ऊपर एक संजोया हुआ मिलेगा। छायावादी कवियों की बिंब पद्धति संश्लिष्ट और भावावेग पूर्ण होते हुए भी इस दृष्टि से इकहरी है। बहरहाल, इस प्रसंग को अब हम यहीं समाप्त करते हैं।